बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 16 सितंबर दिन शनिवार, मैं हूं संदीप सोनी। भारत में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने के लिए अपनी योजना के बारे में केंद्र सरकार सोमवार यानी 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करने वाली है। सरकार इससे पहले रोहिंग्या मुसलमानों को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताकर उन्हें वापस भेजने का इरादा जाहिर कर चुकी है। हालांकि इसके बाद कुछ ऐसे संकेत मिले जिनसे लगा कि रोहिंग्या मामले में भारत सरकार अपनी नीति तय नहीं कर पा रही है। बीबीसी इंडिया बोल में आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर एस डी मुनि, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर बताया है कि वायुसेना के इकलौते मार्शल अर्जन सिंह को गंभीर हालत में दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अर्जन सिंह का हाल जानने के लिए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन खुद अस्पताल पहुंची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे मिलने के लिए अस्पताल का दौरा किया था। 98 साल के अर्जन सिंह को 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका लिए जाना जाता है। रोहिंग्या मुस्लिम संकट को लेकर म्यांमार और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संकट पैदा हो गया है। बांग्लादेश की सरकार ने म्यांमार से आधिकारिक तौर पर शिकायत की है कि उसके सैन्य ड्रोन विमानों और हेलीकॉप्टरों ने बांग्लादेश के वायु क्षेत्र का उल्लंघन किया है। बांग्लादेश का आरोप है कि पिछले एक हफ्ते में 3 बार म्यांमार के ड्रोन विमानों और हेलीकॉप्टरों ने बांग्लादेश के वायु क्षेत्र का उल्लंघन किया। बांग्लादेश ने इसे उकसाने वाली कार्रवाई बताया है, हालांकि म्यांमार सरकार ने इस आरोप से इनकार किया है। इस बीच बांग्लादेश में पुलिस ने म्यांमार से आए रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों की आवाजाही पर पाबंदियां लगाई हैं। पुलिस ने कहा है कि ये शरणार्थी कॉक्स बाजार में सिर्फ सरकार की बताई जगहों पर ही रहें। सरकार ने शरणार्थियों को लेकर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों, मकान मालिकों को निर्देश दिए हैं। सरकार चाहती है कि ये शरणार्थी म्यांमार वापस जाएं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि म्यांमार में पिछले 3 हफ्तों से चल रही हिंसा के कारण अब तक 4 लाख रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश में कुछ इलाकों में रोहिंग्या शरणार्थियों की भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले से ही कुछ शरणार्थी वहां मौजूद थे। बांग्लादेश में अब अधिकारी 80,000 रोहिंग्या शरणार्थियों को पनाह देने के लिए कॉक्स बाजार के पास विशाल कैंप स्थापित करने की तैयारी कर रही है। वहीं इंडोनेशिया में रोहिंग्या संकट पर चिंता जताते हुए विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इसमें शामिल एक प्रदर्शन Nasrul Haq ne kaha
yang tergugah dari hati saya dari ini rasa kebersamaan rasa solidaritas।
मैं यहाँ म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों के जातीय संहार के खिलाफ और मानवाधिकार के समर्थन के लिए आया हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि यह हिंसा जल्द बंद होगी। मुस्लिम होने के नाते नहीं, लेकिन इंसान होने के नाते हिंसा बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये इस संहार का कोई तर्क नहीं है। ये थे नसरुल हक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटानिया पुलिस ने लंदन की भूमिगत ट्यूब ट्रेन में कल हुए धमाके के सिलसिले में एक गिरफ्तारी की है। पुलिस ने फ्रांस की तरफ जाने वाले सबसे नजदीकी बिंदु चैनल पोर्ट ऑफ डवर से एक 18 साल के लड़के को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक जांच में पुलिस ने अच्छी कामयाबी हासिल की है। बीबीसी ने लंदन ट्यूब में हुए धमाके के मामले में जो छानबीन की है, उसमें इसे इस्लामिक कट्टरपंथ से जोड़कर देखने की बात सामने आई है। लंदन ट्यूब ट्रेन के डिब्बे में एक डिवाइस मिला था जिसमें आग की लपटें निकली थी। ये धमाका कामयाब नहीं हो पाया था। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के ताजा परीक्षण की कड़ी निंदा की है और इसे उकसाने वाला कदम बताया है। एक आपात बैठक के बाद अमेरिका, चीन और रूस ने जापान के होकाइदो द्वीप पर से मिसाइल दागने के उत्तर के लिए उत्तर कोरिया की आलोचना की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब अमरीका इस बात को लेकर ज्यादा आश्वस्त है कि वो जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इस बीच रूस के दूत वैसिली नेवेंजिया ने कहा कि सिर्फ राजनयिक उपाय ही संकट को सुलझा सकते हैं।
First of all, we think that threats, tests, launches,
धमकियां, परीक्षण और लॉन्च और फिर धमकी, लेकिन ये सब रोकना चाहिए। हमें अर्थपूर्ण बातचीत करनी चाहिए। ये थे रूस के दूत वैसिली नेबेंजिया के शब्द। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं बीबीसी इंडिया बोल, मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं, टोल फ्री नंबर एक बार फिर आपको बताते हैं 1811-7000 और 1800-102-7001। स्टूडियो में मौजूद हैं रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर एस डी मुनि, जो इस समय दिल्ली स्थित रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, जिसे IDSA के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर वरिष्ठ फेलो हैं और इससे पहले लगभग 35 वर्षों तक दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और ख़ासतौर पर दक्षिण एशिया से जुड़े मामलों की बारीकियाँ अपने छात्रों को समझाते रहे हैं और अभी भी समझा रहे हैं। बहुत स्वागत है प्रोफेसर एस डी मुनि आपका।
धन्यवाद।
और स्वागत दुनिया भर में हमें सुन रहे तमाम श्रोताओं का। इंडिया बोल में आज हम चर्चा कर रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में, भारत की नीति की। जिन श्रोताओं को इस विषय की जानकारी नहीं है, उन्हें हम बताना चाहेंगे कि म्यांमार में हिंसा की वजह से हजारों रोहिंग्या मुसलमानों को जान बचाकर बांग्लादेश भागना पड़ा है। रोहिंग्याओं के इस पलायन के बीच भारत में रहने वाले रोहिंग्याओं पर भी सवाल उठा। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक भारत में उनकी रजिस्टर्ड संख्या यानी जो दर्ज संख्या है वो 14,000 से अधिक है, लेकिन कुछ आंकड़े इस ओर भी संकेत करते हैं कि ये संख्या इससे कहीं अधिक है और लगभग 40,000 रोहिंग्या भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं इस बारे में बताया जाता है कि रोहिंग्या भारत में मुख्य रूप से जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और दिल्ली से सटे आसपास के इलाकों में रह रहे हैं। केंद्र सरकार ने तय किया है कि भारत में रहने वाले अवैध रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेज दिया जाएगा। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि बताइए रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर आपकी क्या योजना है। केंद्र सरकार दो दिन बाद सोमवार को इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने वाली है। मेरी बात यहीं खत्म हुई। कार्यक्रम में श्रोताओं को शामिल करेंगे, प्रोफेसर एस डी मुनि की राय सुनेंगे, लेकिन पहले सुनिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर के पूर्व संपादक शेषाद्रिचारी भारत में रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में क्या राय रख रहे हैं।
कि रोहिंग्या मुसलमान जो है उनमें कुछ रेडिकल एलिमेंट्स हैं जो लोकल बर्मीज और जो बुद्धिस्ट हैं, वहाँ के हिंदू हैं, वहाँ की सेना पर इन्होंने आक्रमण किया है, वहाँ के पुलिस के साथ इन्होंने लड़ाई की है, तो ये उनका अंतर्गत प्रश्न है। इसलिए इनको अगर कोई वहाँ कठिनाई हो रही है तो इनको चाहिए कि बर्मी सरकार के साथ, म्यांमार की सरकार के साथ बातचीत करें और मामला सुलझाएं। किसी भी हालत में इनको भारत में शरण देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और इनको जम्मू और कश्मीर के जैसे जगह पर रखना ये बिल्कुल हमारे लिए हानिकारक होगा और वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज सरकार का जो रवैया है वो सही है और रोहिंग्या मुसलमानों के प्रति हमारी सहानुभूति होते हुए भी हम इनको यहाँ पर भारत में शरण नहीं दे सकते हैं।
ये थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के पूर्व संपादक शेषाद्रिचारी। और अब प्रोफेसर एस डी मुनि, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको ये दलील सही लगती है कि रोहिंग्या जो हैं वो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए किसी तरह का खतरा हो सकते हैं?
देखिए, दो रोहिंग्या हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, एक वो जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं और एक जो म्यांमार में और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो 1980 नहीं तो 1990 से रह रहे हैं, करीब 20 वर्ष अधिक हो गए यहाँ पर रहते हुए। अगर यहाँ रहने वालों के बारे में कोई सुरक्षात्मक संदेह है तो भारत सरकार की अपनी जिम्मेदारी है कि जहाँ भी उनको रखा गया है, क्या अभी तक आपने उनके ऊपर नज़र नहीं रखी? ये 20 साल के बाद अचानक से ये तर्क कहाँ से आया कि इनके ये हमारे लिए बहुत बड़ी सुरक्षा का खतरा बन सकते हैं? इसलिए ये बात तो समझ में नहीं आती है। लेकिन ये बात भी सही है कि जो अलकायदा है या इस्लामिक स्टेट है, उन्होंने कहा है कि हमारा एक दक्षिण एशिया में चैप्टर है और उस दक्षिण एशिया के चैप्टर में उन्होंने बांग्लादेश का नाम लिया और म्यांमार का भी नाम लिया। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय राय ऐसी बन रही है कि हो सकता है कि ये जो अतिवादी संगठन हैं विश्व के स्तर पर, उनकी कहीं कहीं जड़ें या साख रोहिंग्या लोगों से होगी। जो उनकी एक आर्मी है जिसको अराकन रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी कहते हैं, उनके लीडर को शायद ये शक है हमारे लोगों को कि वो कराची में पैदा हुआ और सऊदी अरेबिया में जाके उसने शिक्षा पाई और वहीं से बैठ के शायद इस संगठन का संचालन कर रहा है। तो ये शक सही है गलत है ये कहना बहुत मुश्किल है अभी, लेकिन ऐसे संदेह ज़रूर हैं। इसलिए इन दोनों को अलग अलग पक्ष में देखना चाहिए, एक रोहिंग्या की समस्या जो म्यांमार में है, एक रोहिंग्या रिफ्यूजीज शरणार्थी जो हमारे यहाँ रह रहे हैं।
जी प्रोफेसर एसडी मुनि, कार्यक्रम में चर्चा जारी रहेगी, आपकी राय हम आगे भी अपने श्रोताओं को सुनवाते रहेंगे। इस समय हम कॉलर्स को, श्रोताओं को शामिल कर रहे हैं जो 1811 7000 और 1800 102 7001 हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं, इनके जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इस समय कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं?
हेलो
जी
सर, जसदेव सिंह सनसनवार, गांव गोहावली, पोस्ट 57, तहसील कुमेर, जिला भरतपुर, राजस्थान से बात कर रहा हूँ।
भरतपुर राजस्थान से कार्यक्रम में बहुत स्वागत है, रखें अपनी बात।
सबसे पहले मेरा सभी बीबीसी की टीम को पूर्ण सादर नमस्कार। सर
आपका बहुत स्वागत है, रखें अपनी बात।
सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ये जो रोहिंग्या मुसलमानों का जो मुद्दा चल रहा है सर, ये इंडिया की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक सवालिया निशान है सर। इसमें ये इनको नागरिकता का तो कोई सवाल ही नहीं बनता सर। ये भारत को इसके बारे में इनको नागरिक देना एक आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देना पड़ेगा।
बहुत शुक्रिया भरतपुर से अपनी बात रखने के लिए। इस समय और कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं?
हेलो
जी, रखें अपनी बात, स्वागत है आपका।
जी मैं गांव नया बटड़ू बाईतू जिला बाड़मेर से मोटाराम साहू बोल रहा हूँ।
भरतपुर के बाद बाड़मेर से मोटाराम जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, रखें अपनी बात।
देखिए सर, देश की जो सुरक्षा है वो मानवीय आधार से ऊपर होती है और उनको अगर वो देश के लिए खतरा है तो उनको मानवीय आधार पर नागरिकता नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल भी।
मोटाराम जी की बात कार्यक्रम में शामिल हुई और श्रोता, इससे पहले हम उन्हें कार्यक्रम में शामिल करें, मैं जिक्र करना चाहूँगा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने 11 सितंबर को दिल्ली में कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने की अभी फिलहाल कोई योजना नहीं है। अगले ही दिन यानी 12 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जो ओहदे में किरण रिजिजू से बड़े हैं, जम्मू गए हुए थे। जम्मू में उन्होंने संकेत दिया कि रोहिंग्याओं को वापस भेजने के संबंध में कुछ कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। इन दो बयानों के दौरान 11 सितंबर को ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के प्रमुख हैं जैद राद अल हुसैन, उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने रोहिंग्या मामले में म्यांमार के साथ साथ भारत की भी आलोचना की। इसके बाद भारत ने रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए राहत सामग्री की पहली खेप बांग्लादेश भेजी और अगर इन सभी बयानों और घटनाओं को एक क्रम में रख कर देखें तो प्रोफेसर एसडी मुनि, क्या आपको नहीं लगता कि रोहिंग्याओं के मामले में हाल फिलहाल के दिन में हमने जो देखा है, समझा है कि भारत सरकार की नीति कुछ बदलती हुई नज़र आई, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत सरकार रोहिंग्याओं के मामले में अपनी नीति ही तय नहीं कर पाई,
या ऐसे भी कह सकते हैं कि नीति बड़ी जटिल है?
नीति बड़ी जटिल
और इसके बहुत सारे पहलू हैं
जी।
एक सबसे बड़ा पहलू तो जो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जो मैंने कहा कि जहाँ तक म्यांमार के रोहिंग्या हैं सिक्योरिटी की बात वाजिब है, हमने अपने सीमाओं को वहाँ पर बांध दिया है और जो शरणार्थी आ रहे हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो भारत में रह रहे हैं उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। और मैं नहीं समझता हूँ कि एक जनतांत्रिक देश जो ह्यूमन राइट्स को बिलीव करता है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनको समर्थन देता है, उसको ऐसा कोई एक्शन जल्दी में लेना चाहिए। सरकार क्या करेगी वो अदालत में जाहिर हो जाएगा,
बस दो दिन की बात है।
हाँ, उसके अलावा जो इसके पहलू हैं, एक तो म्यांमार से दोस्ती का पहलू है और म्यांमार में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। चीन के अलावा जो हमारे बॉर्डर के एरियाज हैं उसमें हमें म्यांमार की सहायता की ज़रूरत है, हमारे अपने इंसर्जेंट्स उधर जाते हैं इधर जाते हैं, तो वो पहलू भी ध्यान में सिक्योरिटी का रखना चाहिए। और म्यांमार हमारे लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बहुत बड़ा गढ़ है, अगर हम साउथ ईस्ट एशिया से संपर्कों को बढ़ाना चाहते हैं, कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो म्यांमार के बिना नहीं होगा। तो एक म्यांमार की जो संवेदनशीलता है इस प्रश्न पर उसको भी ध्यान में रखना होगा। दूसरा बांग्लादेश है जो बहुत प्रताड़ित है, और बांग्लादेश और म्यांमार जो दो हमारे पड़ोसी हैं रोहिंग्या के मसले पर बहुत तने हुए हैं एक दूसरे से, उसमें चीन ने तो यहाँ तक कहा है कि हम इनकी मध्यस्थता करेंगे, तो भारत देखता हुआ नहीं रह सकता है, इसलिए बांग्लादेश भी उसका एक बहुत बड़ा पहलू है। और तीसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो ये कह रहा है कि भारत एक जनतांत्रिक देश है, ह्यूमन राइट्स के मामले में इसको खड़ा होना चाहिए और बहुत अधिक सख्त डिसीजन म्यांमार के जो रिफ्यूजी हैं उनके प्रति नहीं लेना चाहिए। तो इन सब डायलेमाज में या इन सब पहलुओं में हमारी नीति जकड़ के रह गई है और इसीलिए उसके अलग अलग प्रारूप हमको दिखाई देते हैं।
प्रोफेसर एसडी मुनि के साथ ये चर्चा जारी रहेगी। इस समय कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं?
नमस्ते।
जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
हरीश चोटा बोल रहा हूँ, गुजरात से सर।
गुजरात से बहुत स्वागत है आपका, रखें अपनी बात।
हाँ सर, आपने जो वर्मा की रिपोर्टिंग की बहुत अच्छी की है,
बहुत शुक्रिया, रखें अपनी बात।
आपने कोई भी भेदभाव नहीं किया, सिर्फ मानवता के धर्म पर आपने जो बात रखी दुनिया के सामने, आप सब के तारीफ हो।
अब आप आज की चर्चा का जो मुद्दा है उस पर आइए और रखें अपनी बात, आप क्या कहना चाहते हैं?
आज सर मैं कहता हूँ कि आपकी ऑनलाइन में मैंने पढ़ा था कि रोहिंग्या मुसलमानों 1930 में भारत से अब मजदूरी करने के लिए बर्मा गए थे।
जी,
और ये कहना चाहता हूँ तो पाकिस्तान से जो भारत में आते हैं वो भी रेफ्यूजी होते हैं, उनको नागरिकता मिलती है।
जी,
नेपाल से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, उनको मिलती है।
जी हमें हम आपकी बात समझ में आई। मैं ये जो शरणार्थियों वाला जो आप सवाल उठा रहे हैं अलग अलग जगहों से आने वाले, इस पे हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले और श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। कौन श्रोता इस समय हमसे जुड़ गए हैं? हेलो हेलो
हेलो
जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
मैं
बिहार से बोल रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका, रखें अपनी बात।
सर हमारे कि हम लोग नेपाल नागरिकता में बहुत से नागरिक, इसी तरह से बांग्लादेश हमारे हिंदुस्तान।
टेलीफोन की लाइन कुछ साफ नहीं है, हम और श्रोताओं को शामिल करेंगे, उससे पहले हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो जो शरणार्थियों वाला सवाल गुजरात से हमारे एक श्रोता पूछ रहे थे उस पर भी हम आएंगे। प्रोफेसर साहब, चंदन मित्रा का एक लेख मैं कहीं पढ़ रहा था, चंदन मित्रा जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा में दो बार गए हैं और वरिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार संपादक हैं, वो लिखते हैं कि रोहिंग्याओं की दशा कितनी ही दुर्भाग्यपूर्ण क्यों ना हो, म्यांमार के अवांछित बच्चे अनवांटेड चिल्ड्रन भारत पर नैतिक बोझ नहीं बन सकते। तो ये जो इन्होंने लिखा है चंदन मित्रा साहब ने और जो हमारे गुजरात वाले श्रोता भी कह रहे थे, यहाँ मैं आपसे प्रोफेसर एसडी मुनि ये जानना समझना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिस पर भारत ने दस्तखत किए हैं जिसके मुताबिक किसी देश के शरणार्थियों को हमें या किसी भी देश को पनाह देनी ही होती है, ऐसा कोई समझौता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर?
नहीं, भारत ने ऐसा कोई यूनाइटेड नेशन से जो रिफ्यूजी का मसला है उसके कन्वेंशन को साइन नहीं किया है, लेकिन भारत हमेशा से जो शरणार्थी आते हैं उनका स्वागत करता रहता है।
जैसे 80 के दशक के उत्तरार्ध में हमने तिब्बत से देखे हैं, 90 की शुरुआत में देखे हैं, बड़े पैमाने पर आए हैं।
तिब्बत से तो 50 में शुरू हो गए, 50 से लेकर तभी आ रहे हैं, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, बांग्लादेश बना इसी आधार पर, 10 मिलियन रिफ्यूजीज आए। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो आपके श्रोतागण हैं वो बार बार नागरिकता का प्रश्न उठा रहे हैं, ये तो प्रश्न है ही नहीं।
बिल्कुल, ये प्रश्न भी
और
उठा
ये,
ही नहीं
ये खामखाम कहां से ये कह रहे हैं कि नागरिकता हमको देनी है नहीं देनी है, वो सवाल नहीं है। सवाल रिफ्यूजीज को रख के शरणार्थी रख के उनको रखना है कि नहीं रखना है।
आपको ध्यान होगा प्रोफेसर साहब, 2-4 दिन पहले एक खबर आई थी, वो खबर ये थी कि भारत सरकार लगभग 1,00,000 चकमा शरणार्थियों को अपना नागरिक बनाने की तैयारी कर रही है, कुछ ऐसा प्लान कर रही है। ये वही चकमा शरणार्थी हैं जो लगभग पाँच दशक पहले पूर्वी पाकिस्तान से भारत शरण लेकर आ गए थे और तब से अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं। 2015 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसके बाद ये पहल की जा रही है कि उन्हें अब भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो क्या नागरिकता के मामले में, भले ही ये सवाल नहीं उठ रहा है लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या चकमा शरणार्थियों में और रोहिंग्या शरणार्थियों में किसी तरह का भेद किया जा सकता है?
देखिए, जो भारत की नीति है उसमें उसका जो पहलू आप इंगित कर रहे हैं वो है वहाँ पर। मुझे लगता है एक सांप्रदायिकता का पुट कहीं ना कहीं है, बिना कहे हुए है, और वो इसलिए है कि हमने अपनी नीति में ये भी एक दो बार कहा है कि जो भी पाकिस्तान और बांग्लादेश से नॉन मुस्लिम्स आएंगे, हिंदू आएंगे, उनका स्वागत है, उनको रखेंगे। अब जम्मू में ही जो बहुत सारे हिंदू आए हुए हैं उनको नागरिकता देने का प्रश्न है, तो इसीलिए ये कन्फ्यूजन या ये संशय होता है कि क्या हम इनको नागरिकता दें कि नहीं दें। फिलहाल रोहिंग्यास को नागरिकता देने का प्रश्न नहीं है, रोहिंग्यास को वापस भेजने का प्रश्न है कि भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। और ये एक दोगली नीति है कि अगर आप किसी शरणार्थी को नागरिकता देंगे और दूसरे को नहीं देंगे और लोग उसका भेदभाव धर्म या जाति के नाम पे करेंगे तो वो उचित नहीं है। क्योंकि ये प्रश्न खड़ा हुआ था उस वक़्त जब तमिल की समस्या भी बहुत बड़ी थी और बांग्लादेश से बहुत सारे जो इलीगल माइग्रेंट्स आए हुए हैं, कईयों ने कहीं ना कहीं नागरिकता ले ली है, सरकार चाहे चाहे नहीं चाहे उन्होंने ले ली है, और एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये नॉर्थ ईस्ट को लेकर। तो ये मुद्दा ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है,
मुद्दा ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कार्यक्रम में शामिल हैं प्रोफेसर एस डी मुनि और हम चर्चा कर रहे हैं रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर जो इस समय भारत में मौजूद हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि भारत सरकार उन्हें वापस भेजने की तैयारी कर रही है, कुछ योजना बना रही है, और या उस पर उसका सरकार का कुछ रुख भी बदल सकता है, जिसका पता सोमवार को तब चलेगा जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी। इस समय कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, रखें अपनी बात, बताएं अपना नाम।
जी हेलो सर, मैं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले से बात कर रहा हूँ, अनवर नाम है मेरा।
अनवर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से बोल रहे हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, रखें अपनी बात।
जी सर, मैं डीबीसी के तमाम श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
रखें अपनी बात, रखें।
जी सर, मेरी बात ये है सर कि भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए पूरा, और इसको धर्म के लिहाज से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, इंसानियत की निगाह से देखना चाहिए सर। ये इंसान जो आए हैं ये छोटे बच्चे और बूढ़े सर, औरतें बेचारे कभी आतंकवादी नहीं हो सकते हैं, इस पे जो है उनको जो है किसी भी धर्म के लिहाज से ना देखते हुए सर इनको जो है सजा जब तक देनी चाहिए जब तक जो है ये वहाँ पे जो है राखी क्षेत्र में जब तक वहाँ अमन ना हो जाए सर, इनको ऐसे भेजना जो है ये जो है समुदाय के लिए सर बहुत बड़ा जो है एक तरह से धोखा देना है सर।
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से अनवर थे हमारे साथ, और इससे पहले कि और श्रोताओं को कार्यक्रम में चर्चा में शामिल करें, प्रोफेसर एसडी मुनि, आपको लगता है कि क्या सरकार के ऊपर किसी तरह का अंदर से या बाहर से, अंदर से मतलब सरकार के भीतर से और बाहर से मतलब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, रोहिंग्या मामले में किसी तरह का दबाव है, हो सकता है, या सरकार पर ऐसा कोई दबाव अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नहीं बना सकता या नहीं होगा?
नहीं, बाहर से थोड़ा बहुत दबाव है, जैसा आपने कहा था यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव ने बयान दिया जिसमें उन्होंने भारत को भी शामिल किया कि ये ठीक नहीं है, कुछ न कुछ करना चाहिए इसके बारे में। और दूसरी तरफ जो मैंने आपसे कहा कि चीन ने पुरजोर तरीके से म्यांमार की सरकार का समर्थन किया है कि वो जो भी सैनिक कार्रवाई कर रही है रखाइंस में वो ठीक है, तो अगर वो उसको जस्टिफाई करते हैं और दूसरी किस्म का प्रेशर म्यांमार पे लगेगा तो हमें भी उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बांग्लादेश भी एक तरह से अपने ऊपर दबाव है, हमने सामान भेजा है रिफ्यूजीज़ के लिए, लेकिन एक ये इस तरह का दबाव है। अंदर से कितना दबाव है नहीं है मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ये बात सही है कि जैसे मैंने कहा सांप्रदायिकता का पुट कहीं कहीं पर है उसमें, और ये कहना कि जो हिंदू रिफ्यूजीज आएंगे पाकिस्तान से और बांग्लादेश से उनका स्वागत है, अपने आप में एक ऐसा बयान है जो हमारी नीति की असंतुलित सीमा को दर्शाता है।
ये मैं प्रोफेसर साहब मैं थोड़ा इसको मिस कर रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा ये बयान कब और किसने और कहाँ दिया हिंदू शरणार्थियों को लेने वाला।
ये कुछ महीने पहले की बात है, शायद पिछले साल होगा ये, और उसी चक्कर में ये जो माइनॉरिटीज़ परसिक्यूट हो रही हैं पाकिस्तान में और उनको ये सारा ये हमारे यहाँ जो लव जिहाद है इस तरह के जो मसले हैं उनसे जुड़ा हुआ है कि जो परसिक्यूट किया जा रहा है उनको अगर वो रिफ्यूजीज़ बन के आते हैं तो हमें उनको वापस नहीं धकेलना चाहिए, ये बात बिल्कुल कही गई है। मैं आपको तारीख नहीं बता सकता हूँ लेकिन चंद महीने या ज़्यादा से ज़्यादा पिछले साल ये ज़रूर बात
है। जी मैं इसको शायद रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बहरहाल कार्यक्रम में हम और श्रोताओं को शामिल करेंगे। कौन इस समय हमसे जुड़ रहे हैं? हेलो
हेलो
जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
मैं आर के मिश्रा, राधाकांत मिश्रा, सिवान बिहार से बोल रहा हूँ।
सिवान बिहार से आर के मिश्रा जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, रखें अपनी बात।
सबको नमस्कार। एक बात सुन के मैंने कभी कभी जी मचलता है। दो बातों को मुझे कहनी है। ये रोहनिया मुसलमान की बात होती है शरणार्थी के नाम पर, जब पूरा भारत जातीयता से जूझ रहा है तो ऐसे कार्यक्रम को न लिया जाए। दूसरी बात, प्रोफेसर साहब के द्वारा कही गई दोगुली नीति, तो रोहनिया मुसलमान जाके कश्मीर में बस सकता है लेकिन बिहार और यूपी के लोग कश्मीर में नहीं जा सकते, क्या ये दोगुली नीति नहीं है?
पर मिश्रा जी, बिहार और के लोग या दूसरे राज्यों के लोग मुझे नहीं लगता कि भारत के किसी और हिस्से में नहीं रह रहे हैं, तो मैं तो आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे श्रोता भी आपकी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। तो और श्रोताओं को आपकी बात शामिल हुई, बहुत शुक्रिया, आगे भी फ़ोन करते रहिएगा मिश्रा जी। और कौन श्रोता इस समय हमसे जुड़ रहे हैं?
सीताराम राय, ग्राम मथुरा, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
सीताराम जी, हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका, रखें अपनी बात।
हम बात ये रखना चाहते हैं सर कि जब हम घर में ही अंधेरा कर देंगे तो बाहर उजाला। हमारा कहना ये है कि बांग्लादेश से जितने लोग आए हैं बंगाल में, आज इतनी मुसीबत वहाँ के प्रॉपर लोगों के लिए खड़ा कर दिए। हमको मालूम है राजनीति को लेकर के उनको लोग भले नागरिकता दे दिए हों, तो हमारी 1.25 अरब से ज्यादा जनता जो है यहाँ पर है, खुद हम अपने बच्चों का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ दर दर जो है कितनी सरकार की कठिनाई है और सभी लोग जूझ रहे हैं इन समस्याओं से, बढ़ती जनसंख्या, घटते संसाधन। तो हम पहले अपने घर की बात देखें ना कि हम ठीक है, मानव के नाते से हमारा विचार है जो उनको हम रखें, लेकिन हमको अपना पहले देख करके ही सर जो है हम दूसरे, पहले राष्ट्र अपना हित देखेगा, इसके बाद।
सीताराम जी आपकी बात कार्यक्रम में शामिल हुई। और कौन श्रोता इस समय हमसे जुड़ रहे हैं?
हाँ सर, मैं स्वयंवर गौतम, जिला सिद्धार्थनगर से बोल रहा हूँ।
गौतम साहब, बहुत स्वागत है, रखें अपनी बात।
हाँ सर, जो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये वहाँ से लोग आए हैं म्यांमार से,
जी हेलो, जी जी रखें अपनी बात।
हाँ ये सर ठीक नहीं है अपने देश के हिसाब से।
अच्छा, और कोई श्रोता हमारे साथ इस समय लाइन पर जुड़ रहे हैं? मुझे संकेत मिल रहा है, कौन श्रोता इस समय हमसे जुड़ रहे हैं?
महेंद्र सिंह बोल रहा था सर, अजमेर से।
अरे अजमेर से महेंद्र जी, बड़ा स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है, रखें अपनी बात।
सर मेरा बात ये है सर कि भारत सरकार, पहले ऐसे बहुत से मुद्दे होते रहते थे, चाहे रोहिंग्या मुसलमान है, चाहे भारत के मुसलमान है, चाहे साहित्यकार है, मतलब ये सरकार के पूरी तरह से फेल है। मेरा ये मानना है ये सरकार हर एक मुद्दे पे फेल है।
ये सरकार को हर एक मुद्दे पर फेल बता रहे थे, अपना अपना पक्ष है, अपनी अपनी राय है। एक आखिरी सवाल प्रोफेसर एसडी मुनि, बहुत संक्षेप में बताइएगा, रोहिंग्या शरणार्थियों का मामला भारत सरकार के लिए वैसे तो एक नीतिगत मामला है, लेकिन आपको लगता है कि केंद्र में सरकार किसकी है किसकी नहीं है, इससे कुछ फर्क पड़ता है इस तरह की नीतिगत मामलों में भी?
पढ़ना चाहिए नहीं अगर पड़ता है तो। अभी इसमें ये जो मसला शुरू हुआ है इसी से हुआ है कि सरकार ये सोच रही है कि इनको वापस भेजा जाए। अगर सरकार इनको वापस भेजने की बात नहीं करती तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनता, ये एक विदेशी संबंधों का मुद्दा बन के रह जाता।
तो मतलब ये मुद्दा इसलिए बन गया क्योंकि कुछ सरकार का फ़र्क है, इसलिए ऐसा लगता है आपको?
मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये ज़रूर है कि
मुद्दा तो नीतिगत है।
1980 और 1991-92 में जब रोहिंग्याज आए थे तो उनका स्वागत किया गया, उनको खाना दिया गया, उनको शरण दी गई और उनको अभी तक नहीं छेड़ा गया। अब पहली बार है कि जब उनको छेड़ा जा रहा है, जबकि रोहिंग्या का मसला आज का नहीं है, बहुत पुराना है।
तो अब BBC इंडिया बोल को मैं यहीं विराम देना चाहूँगा, घड़ी की सुइयाँ अनुमति नहीं दे रही हैं। प्रोफेसर एसडी मुनि, आप स्टूडियो में आए, एक जटिल से लगने वाले विषय को सुनने में सरल बनाने की कोशिश की, हमारी मदद की, बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया हमारे स्टूडियो मैनेजर देवाशीष कुमार का और सिंधु वासिनी का भी जो फेसबुक के ज़रिए हमें आप तक पहुँचा रही थी। श्रोताओं मित्रों को आज निराश होने की ज़रूरत नहीं जिनसे हम बात नहीं कर पाए, अगले शनिवार इंडिया बोल में अपनी बात रखने का आपको दोबारा मौका मिलेगा। फिलहाल संदीप सोनी को पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति और कल सुबह भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में फिर मिलेंगे आपसे। शुभ रात्रि।